डार्क विला को आग में राख होते देखकर आहान ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया और वो अपने गार्ड्स के साथ वहां से वापसी के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया वेंशन में अरमान के सामने आकाश और सुमित अरमान को देखकर गुस्से में बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? ये वक्त बिल्कुल भी शांत रहने का नहीं है, ये एक्शन लेने का वक्त है। पहले ही हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है और हर जगह अपने आदमियों को तैनात कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हमें आस्था मिल सकती है। अगर आस्था को सम्राट ने अगवा किया है तो उसने जरूर पूरी प्लानिंग के साथ किया होगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और फटाफट इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। अरमान चलो, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और ध्रुव वाहन वहां जा चुके हैं। अगर वहां उनकी जान को खतरा हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। फटाफट चलो अरमान। लेकिन अरमान बिना कुछ बोले बस आकाश और सुमित को देख रहा था। उसकी ये चुप्पी उन दोनों को बेहद ही ज्यादा इरिटेट कर रही थी। अब आकाश गुस्से में अरमान को कुछ कहने ही वाला था कि तभी नीचे से आहान और ध्रुव की तेज आवाज सुनाई दी, अरमान भाई, अरमान भाई। दोनों भागते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर आ रहे थे। आहान और ध्रुव को सही सलामत देखकर वंशिका और रौनक ने राहत की सांस ली। उनकी आवाज सुनकर आकाश और सुमित तुरंत नीचे आ गए थे। अरमान भी उनके पीछे पीछे आ गया। तभी आहान ने सीधे अरमान को देखते हुए कहा, भाई अरमान भाई, पूरे डाक विला को आग लगा दी गई है। वहां पर कोई भी नहीं है। हम भाभी को कहाँ ढूंढे? वहां कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई खास रिएक्शन नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से ही बता हो कि डाक विला को आग लगा दी जाएगी। अब जैसे ही आकाश और सुमित ने ये सुना, उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से अरमान की ओर देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अगर अरमान ने आहान और ध्रुव को वहां जाने से रोकने की कोशिश नहीं की तो इसका मतलब साफ है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि राजवीर ने जरूर डाक विला को या तो खाली कर दिया होगा या फिर किसी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, दोनों ही पूरी तरह से शांत पड़ गए। वहीं अभिमान जी और दादाजी पूरी तरह से घबराए हुए अरमान को देखकर बोले, बेटा, अगर तुम्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था तो क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि आस्था बेटी कहाँ है? तभी अरमान ने गहरी नजरों से अभिमान जी को देखा और फिर एकदम सर्द आवाज में कहा, नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आस्था कहाँ है। ये सुनकर वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नानी माँ तो तुरंत ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई। दादाजी और अभिमान जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सबको एक अजीब से डर महसूस होने लगा था। दादाजी घबरा कर बोले, अगर अरमान को भी उसके बारे में नहीं पता तो फिर मेरी बेटी आस्था को लेकर वो दरिंदा कहाँ गया होगा? बस एक बार मुझे मिल जाए, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए दादाजी फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अरमान, वो अभी भी एकदम डार्क चेहरे के साथ खड़ा था। अब अविनाश खुद को रोक नहीं पाया। वो एक बार फिर अरमान के सामने आकर बोला, अगर तुम्हें पहले से अंदाजा था कि डार्क विला इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो तुम ही बताओ आस्था को कहाँ ढूंढे? अगर तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है तो हमें रास्ता दिखाओ अरमान। मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा, चाहे मुझे पूरे शहर की एक एक ईंट क्यों ना खंगालनी पड़े, चाहे मुझे पूरी सिक्योरिटी खरीदनी पड़े, मैं सब कुछ अपनी गोरी के लिए तबाह कर दूंगा। हर कोई अरमान से अलग अलग तरीके से सवाल कर रहा था, जवाब मांग रहा था, लेकिन अरमान, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो लेकिन बाहर सब कुछ शांत हो। उसकी ये खामोशी सबको और ज्यादा बेचैन और इरिटेट कर रही थी। अब अविनाश बेकाबू होते हुए चिल्लाया, कुछ तो बोलो अरमान, हमें बताओ क्या करना होगा, कहाँ ढूंढे उसे, हम खाली हाथ खड़े नहीं रह सकते। ये कहते हुए उसकी आवाज और भी तेज हो गई। उसी वक्त सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर खड़ा था अबीश सिंह राठौर, जो वहां आकाश को बाप बनने की बधाई देने आया था। साथ साथ वो कुछ खिलौने, फल, मिठाइयां और कपड़े लेकर आया था। अब जैसे ही उसने अविनाश की बातें सुनी और सारा दृश्य समझा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था को इस तरह से अगवा कर लिया जाएगा। ये जानकर उसके हाथों में पड़े हुए सारे सामान जमीन पर गिर गए। अभी के हाथ से सामान गिरते ही सबकी नजरें उसी पर जाकर ठहर गईं। वहीं अब अबीर तुरंत ही अरमान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अरमान को देखते हुए बोला था, कहाँ है आस्था अरमान सिंघानिया, जवाब दो, तुम इस तरीके से चुप रहकर हमारे सवालों से नहीं बच सकते हो, हमें बताओ कहाँ है आस्था अरमान सिंघानिया। अबीर का ये गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं अरमान को भी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस वक्त उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो उस पर किसी तरह का गुस्सा दिखा सके। अरमान अभी भी पूरी तरह से खामोश था। अरमान की ये चुप्पी सभी लोगों को पूरी तरह से खटकने लगी थी। सबका पारा पूरी तरह से चढ़ चुका था। इतना ही नहीं, नानी माँ तो छाती पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी अरमान पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं आहान अब बिल्कुल इमोशनल ब्रेकडाउन होकर अरमान के सामने गया और उसे देखकर बोला, क्या बात है भैया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाभी आपकी जिंदगी है, आपकी दुनिया है। भाभी के बिना तो आप एक पल के लिए सांस भी नहीं ले सकते,
लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ खड़े हैं बिना किसी रिएक्शन के, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है भैया। मैं जानता हूँ कि भाभी को आप कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें सही सलामत लेकर भी आएंगे, लेकिन भैया कम से कम कुछ तो बोलिए, हमें बताइए हमें क्या करना है, किसे मारना है, किसे पकड़ना है, कुछ तो हमें आइडिया दीजिए भैया। और डाक विला को इस तरह से जला दिया गया है तो वो राजवीर और सम्राट भाभी को लेकर कहाँ जा सकते हैं? कुछ तो सोचिए ना भैया, कुछ तो बताइए। आहान की बातें सुनकर अरमान ने एक गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम चाहकर भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते। अगर इस किडनैपिंग में राजवीर जिंदल का हाथ है तो हम चाहकर भी आस्था को नहीं ढूंढ सकते, जब तक कि वो खुद ना चाहे। रही बात आस्था की, तो ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आस्था को वो लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है, और अरमान सिंघानिया की बीवी को छूना भी बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ तो उसे अगवा किया गया है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस इंतजार करो आखिरकार कब फोन आता है। जैसे ही अरमान ने रहस्यमयी अंदाज में ये कहा, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहीं अरमान एक पल के लिए भी बैठा नहीं था, वो केवल खड़ा खड़ा लगातार बार बार उसी वीडियो को देखे जा रहा था। उसे इस तरह खड़ा देखकर सबको उसके अंदर एक खतरनाक तूफान का एहसास हो रहा था। अरमान भले ही मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी पूरी कहानी बयां कर रही थी। तभी अभीर अचानक झल्लाते हुए बोला, मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मैं नहीं जानता मिस्टर अरमान सिंघानिया आप किस फोन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी बटरफ्लाई को ढूंढने, अपनी जान देकर उसे छुड़ा कर लेकर आऊंगा। ये बोलकर अबीर तुरंत खड़ा हुआ और जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाकर अपनी बंदूक लेकर वहां से जाने लगा। अबीर को जाता देखकर अविनाश ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो मिस्टर राठौर, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वहीं अबीर ने अविनाश को बस एक नजर देखा और इशारे से साथ आने को कहा, और दोनों देखते ही देखते वहां से बाहर निकल गए। वहीं आहान और ध्रुव तुरंत एक दूसरे को देखने लगे।
आहान गुस्से में बोला, हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मुझे नहीं पता अरमान भाई किस फोन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो समझ चुका हूँ कि हम घर बैठे भाभी को नहीं ढूंढ सकते। मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ, मैं अपनी भाभी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ये कहते हुए आहान पूरी तरह से इमोशनल हो गया था। आस्था के साथ बिताया हुआ एक एक पल उसे याद आने लगा, कैसे आस्था ने उसे संभाला, कैसे उस घर को संभाला। ये सब याद करते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। ध्रुव भी उसकी ओर देखने लगा, दोनों की आंखों में आस्था के लिए बेशुमार प्यार साफ दिखाई दे रहा था। रौनक कभी बुरा हाल हो चुका था, वो कभी दादाजी के गले लगकर रो देती तो कभी नानी माँ के गले लगकर। पूरा का पूरा माहौल गमगीन हो चुका था, और उस सबके बीच अरमान अभी भी पत्थर की तरह खड़ा था। हालांकि उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। सभी लोगों को अरमान को इस तरह खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चाहकर भी अरमान से कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अरमान ने पूरी तरह से खुद को पत्थर सा बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि आस्था के बिना वो जीता जागता इंसान तक नहीं है, बल्कि केवल एक लंबा चौड़ा लोहे जैसा शरीर है जिसमें एक बेजान पत्थर बस गया हो। सभी की पूरी तरह से नजरें अरमान पर टिकी हुई थीं, क्योंकि अगर किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वो सिर्फ अरमान से ही थी, वही अरमान जो दुनिया के किसी भी कोने से आस्था को खोज कर निकाल सकता था। लेकिन उसका ऐसा व्यवहार किसी को समझ नहीं आ रहा था, और सब उसके इस अजीब एटीट्यूड को महसूस कर रहे थे। फिलहाल एंजल भी अब थोड़ा सा उसके पास आई, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश वहां से गया था उसे लेकर एंजल को काफी घबराहट हो रही थी। वो अरमान को देखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया प्लीज कुछ तो बोलिए, आप इस तरह का अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अविनाश और अभी दोनों उसे खोजने के लिए गए हैं, और वो भी उन अनजान दुश्मनों से लड़ने जिनका ये तक पता नहीं है कि आखिर वो कौन है और कहाँ छिपे बैठे हैं। अगर इस वक्त कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप आस्था को खुद खोजना नहीं चाहते तो इट्स ओके, कम से कम अविनाश को तो उनका एड्रेस बता दीजिए, अविनाश और अभी मिलकर आस्था को ढूंढ लेंगे। जैसे ही एंजल इतनी सारी बातें कह रही थी, वहीं पास में खड़ी नानी माँ कहीं ना कहीं अपना आपा खोने लगी थी। पहले ही वो पूरी तरह से रो रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अरमान का आस्था के लिए क्या मायने हैं। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर एंजल दामाजी के सामने इस तरह की बातें करती रहीं तो कहीं वो अपना गुस्सा और उलझन उस पर ही ना निकाल दें। इसी बात से डरते हुए दादी माँ फटाफट उठी और एंजल को कंधे से थामकर शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटी, परेशान मत हो, अविनाश बेटा जल्दी आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटी? ये कहते हुए उन्होंने उसे धीरे से दूसरी तरफ बैठा दिया और खुद अपने आंसू पूंछते हुए घबराई नजरों से अरमान को देखने लगी, जो अभी भी बिल्कुल उसी हालत में बिना पलक झपकाए एलईडी टीवी की स्क्रीन को घूर रहा था, जहां बार बार रिपीट होकर वही वीडियो चल रहा था जिसमें आस्था को बेरहमी से अगवा किया जा रहा था। आखिरकार क्या चल रहा है अरमान के दिमाग में? क्या उसे अंदाजा है कि आस्था कहाँ है? क्या अरमान आस्था को सही सलामत बचा कर लेकर आ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, सुनते रहिए पॉकेट तेरे इश्क में।